ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के विरुद्ध अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता ललित चौधरी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
देश में नई भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। नई संहिता में अपराधों की धाराएं बदली हैं और कईयों की तो परिभाषाएं भी बदल चुकी हैं। तो कानूनों में क्या बदलाव आए हैं, उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री ललित चौधरी। ललित जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
ललित जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जो अभी हाल में लागू हुई है नई न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या प्रमुख बदलाव आए हैं पहले के प्रावधानों, पहले के कानूनों के मुकाबले?
जैसा कि आप जानते हैं कि एक नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू हुआ है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। इसने पूरी तरह से जो ब्रिटिश काल का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें परिवर्तन करा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि पहली अगर संहिता पे जाएं तो 511 सेक्शंस थे आईपीसी में, और अब जो नई संहिता है उसमें 358 सेक्शंस हैं, जिसमें मुख्य तौर से 175 सेक्शंस को मॉडिफाई करा गया है, कुछ 8 नए प्रावधान जोड़े गए हैं और 22 सेक्शनों को रिमूव करा गया है, जिसमें से आप देखेंगे सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस को भी रिमूव करा गया है। उसमें 497 है अडल्ट्री, व्यय विचार जिसे कहा जाता है उसको रिमूव करा गया है, और 124A सीडिशियस लॉ जिसे राजद्रोह भी बोला गया है उसे रिमूव करा गया है। यह कानून महिलाओं से संबंधित अपराधों में, यह कानून बच्चों से संबंधित अपराधों को प्रेफरेंस जिसे प्राथमिकता देता है। साथ ही साथ जो राज्य के प्रति अपराध हैं, जो स्टेट लॉ के प्रति अपराध हैं, उनको भी प्राथमिकता देता है। बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस थे, उनको सिंप्लीफाई करने का एक लॉ मेकर्स ने बहुत अच्छा मुहिम ये नए कानून के द्वारा ये रखी है। ये विक्टिम सेंट्रिक है और इसे सिटीजन सेंट्रिक भी बोला गया है। डिजिटाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा, तकनीकी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ कानून बदले हैं, और आज की चर्चा हमारी विशेष तौर पर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बारे में क्या प्रावधान है नए कानूनों में। तो क्या इन अपराधों की परिभाषा भी बदली है या परिभाषा पहले की तरह है और कुछ प्रावधान नए आए हैं?
जैसा 124A में अगर हम जाएं तो एज सच वो पूरी तरह से इसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, अब कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो 124 की तरह है, मगर उससे ही मिलता जुलता एक प्रावधान रखा गया है 152 में। अगर हम ये देखें कि राजद्रोह को पूरी तरह से देशद्रोह में परिवर्तन करा गया है, राजद्रोह की परिभाषा को पूरी तरह से विस्तार देने का काम करा गया है, उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसको ब्रॉड करा गया है। अगर हम 124 में जाएं तो वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शब्दों से, लिखित शब्द हो या बोलकर कोई शब्द हो, या किसी संकेतों द्वारा या किसी दृश्य द्वारा या फिर और कोई अन्य मीन्स द्वारा, अगर भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी सरकार के प्रति घृणा का भाव या आप समझें या अवमानना का भाव पैदा करता है, तो वो 124 में वो दंडनीय था पहले, जिसमें आजीवन कारावास प्लस 3 साल तक की सजा थी। अब 152 में जो उसका दायरा बढ़ाया गया है, उसकी अगर परिभाषा में हम जाएं तो ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने शब्दों द्वारा, वो शब्द बोलकर भी हो सकते हैं, वो शब्द लिखित भी हो सकते हैं, या किसी संकेतों द्वारा या दृश्य के प्रतिनिधित्व द्वारा जिसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा भी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरे भारत में, पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो अपराध इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय किसी साधनों द्वारा अगर कोई अलगाववादी हरकतें या उसके प्रति कोई चीज को भड़काता है या विरोध भड़काता है, तो उस गतिविधियों को या अलगाववादी गतियों को इस नए कानून की धारा 152 में जो बीएनएस है उसमें पनिशेबल बोला गया है, और इसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो पहले के मुताबिक बढ़ाई गई है। मतलब इस कानून को बहुत सख्त करा गया है, जहां पहला कानून लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास के ऊपर बोलता था, प्लस 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, 3 साल तक की सजा। अब यही कानून इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब आजीवन कारावास प्लस 7 साल तक की सजा भी हो सकती है, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
अगर हम देखें तो जैसे अभी जो नई धाराएं हैं बीएनएस की, और उसमें 113 और धारा 197 1D, उनके साथ क्या हमारे जो सेक्शन 152 है, 152 है, इसको जोड़ा जा सकता है कहीं?
आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें हम, तो वहां पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है। उसी राइट में राइट टू स्पीक का भी अधिकार है। तो ये जो नया कानून है 152, ये नहीं कहता कि आप बोल नहीं सकते, अपनी बातों को नहीं रख सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने व्यूज रख सकते हैं, और अगर आपकी कोई स्ट्रांग डिसअप्रूवल भी है किसी सरकार को लेकर या नीतियों के द्वारा, तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या हेल्दी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इस पे आपकी कोई पाबंदी नहीं है। खुद 152 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर आप कोई स्ट्रांग डिसअप्रूवल रखते हैं और आपकी जो मंशा है वो लॉफुल है, मतलब बोनाफाइड है, और आपकी कोई भी इंटेंशन अटेम्प्ट या एक्साइट करने की नहीं है, हेट्रेड या अवमानना की जो घृणा पैदा करने वाली स्थिति नहीं है, तो वैसा आप स्पीच कह सकते हैं। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति असहमत है किसी चीज को लेकर, तो उसकी असहमति भी दर्ज करनी चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी है और फंडामेंटल राइट का एक सिद्धांत भी है। तो अगर हम किसी चीज को लेकर असहमत हैं, तो उसकी जो डिसेंट ओपिनियन है उसको भी वैल्यू देना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि डिसेंट ओपिनियन एक सेफ्टी वॉल की तरह है, और अगर हम अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को अगर कोई रोकता है किसी के, तो वो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, कहीं ना कहीं फट जाएगा। तो ये कानून जो है ये बताता है कि अगर आप ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पे खतरा होता है, तो वहां पे आपको दंडनीय माना जाएगा आपको, और आपको सजा मिलेगी। साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जहां तक 113 जिसे टेररिस्ट एक्ट या आतंकवादी कार्य की बात करी गई है, तो ये 113 जो सेक्शन है नया जुड़ा है। इससे पहले UAPA में भी इस सेक्शन का, इस टेररिस्ट एक्ट का विवरण था, तो इसको इंक्लूड करा गया है इस नई संहिता में। ये भी इसी तरह की बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश की, मतलब भारत देश की एकता पर या भारत देश की अखंडता पर या उसकी सुरक्षा पर खतरा डालता है, या खतरा डालने जैसी कोई स्थिति पैदा करता है, उसका प्रयास करता है, और मान लीजिए आम जनता को या एक वर्ग को उसको डराने के इरादे से डराता है, तो उस कार्य को हम आतंकवादी कार्य में डालते हैं। यहाँ पे शब्द टेररिस्ट एक्ट डिफाइन है, कोई टेररिज्म या टेररिस्ट पर्टिकुलर शब्द डिफाइन नहीं करा गया है।
तो जैसे धारा 197(1)(d) के लिए है, और जैसे अभी आपने 113 के बारे में बताया, अगर इनको देखा जाए तो जो 152 के जो प्रावधान है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई अपराध इस तरह का होता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो सिर्फ एक धारा नहीं लग रही होती, हम आमतौर पर यही देखते हैं। अगर हम देखें तो अपने आप में 152 काफी गंभीर है और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए काफी है, या बाकी धाराओं के साथ मिलाकर इसे और कहीं सख्त बनाया जा सकता है?
अपने में ही 152 बहुत कड़ा कानून है, और ये कानून आप देखेंगे कि अगर आप इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के प्रति हेट्रेड या कंटेम्प्ट की फीलिंग अगर आप, या डिसअफेक्शन की फीलिंग क्रिएट करते हैं, तो आपको आजीवन कारावास व 7 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही साथ अगर ये कृत्य करते हुए, ये काम करते हुए आप डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, अवमानना क्रिएट कर रहे हैं, या घृणा पैदा कर रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है मान लीजिए, या कोई और कृत्य हो जाता है, तो अगर मृत्यु होती है तो डेथ सेंटेंस की पनिशेबल होगा, और कोई और कार्य होता है तो अदर इम्प्रिजमेंट भी इसमें हो सकती है। तो ये अपने में एक इंडिविजुअल सेक्शन भी है, साथ ही साथ अगर ये काम करते वक्त, ये कृत्य करते वक्त आप कोई और अपराध भी करेंगे, तो बीएनएस के और भी सेक्शंस इसमें इन्वोक करे जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी ये एक बड़ा अपराध है, साथ ही साथ इसमें अगर दूसरे अपराधों की भी बात करी जाए तो उनको भी जोड़ा जा सकता है। जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की इसमें बात करी, तो नई संहिता ने क्लियर कट बताया है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट होता क्या है। क्योंकि अगर हम पहली वाली संहिता में जाएं, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब बताया गया है टिल द रिमेंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो वो क्लियर कट एक्सप्रेशन हमारी किसी भी संहिता में नहीं था। केस लॉ के माध्यम से लाइफ कन्विक्ट वर्सेस बीके श्रीवास्तव केस लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हमारे को लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होगा टिल द रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि ये है भी कि नहीं। हमको लगता था ये लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब 14 साल या 20 वर्ष है। तो इस नई संहिता में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको क्लियरली डिफाइन करा गया है कि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये बताया गया है कि आप इस एक्सप्रेशन को इसी तरह से जो संहिता में है इसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो आप देखेंगे अगर कोई ऐसा अपराध होता है जो गैर गंभीर है और इस संहिता में वो गवर्न होता है तो 1 जुलाई के बाद उस पर सारी धाराएं लागू होंगी और पनिशेबल होगा तो उसी तरह की जो पनिशमेंट है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी।
आपने अभी गंभीरता की बात की तो क्या जो इस तरह के अपराध हैं, क्योंकि जो संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली बात है या किसी काम को टेररिस्ट एक्ट बताने वाली बात है या इससे जुड़ी और भी बातें हैं, इनमें अपराधों की गंभीरता का निर्णय करने के लिए क्या कुछ स्पष्ट प्रावधान है?
एक अपराध खुद में भी एक बहुत बड़ा कृत्य है एक ह्यूमन सोसाइटी के प्रति। तो अगर हम टेररिस्ट एक्ट को देखें तो उसकी परिभाषा काफी बड़ी है जो कहता है कि आप अगर अखंडता संप्रभुता और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को अगर आप हैम्पर करते हैं या थ्रेटन करते हैं तो आपको जो कारावास मिलेगी वो 10 साल तक की है। साथ ही साथ अगर हम उसका कॉन्स्पिरेसी करते हैं उसी अपराध की अगर हम षड्यंत्र करते हैं तो उसमें 5 साल तक की सजा और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का प्रावधान है। अगर आप उसको अबेट करते हैं मतलब उकसाते हैं या टेररिस्ट एक्ट के द्वारा प्राप्त करी गई कोई प्रॉपर्टी है अगर आप नोइंगली उसको पजेस करते हैं अपने पास रखते हैं तो उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की पूरी सजा का प्रावधान रखा गया है। लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया ही, तो जैसे जैसे अपराध की प्रवृत्ति बदलती है वैसे वैसे अपराध की प्रति जो पनिशमेंट दी गई है उनमें भी बदलाव आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया टेररिस्ट एक्ट के दौरान अगर आप किसी की डेथ कॉज कर देते हैं तो यू विल बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। और साथ ही साथ अन्य केसों में अगर आप कोई एक्ट करते हैं विच इज इलीगल और जो ऑफेंस है तो आपको 5 साल तक की सजा और आजीवन कारावास तक का उसको एक्सटेंड करा जा सकता है।
अभी जैसे 152 के तहत अगर हम देखें उसमें वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह को भड़काता है, जो वित्तीय साधनों के उपयोग से, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्योंकि इसका मतलब है कि कौन फंडिंग कर रहा है इस तरह के कामों के लिए, अगर जो फंडिंग कर रहा है उसको भी इसके तहत दंड दिया जा सकता है।
152 में बोला गया है, शब्द इस्तेमाल करा गया है पर्पसली और नोइंगली, मतलब जान पूछ कर अगर आप ये काम कर रहे हैं और ये जो साधन है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से कर रहे हैं और वित्तीय साधन से कर रहे हैं मतलब एक ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट से कर रहे हैं जो इलीगल फंडिंग है और वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है भारत की या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे पूरी कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। तो डेफिनेशन में जो परिभाषा है उसमें इन सब शब्दों का जोड़ने का तात्पर्य यही है कि डेफिनेशन को इंक्लूसिव बनाया गया है कि कहीं ना कहीं जो मोटो है कानून का कि कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार से बचना नहीं चाहिए तो इस डेफिनेशन को इतना सख्त और इंक्लूसिव बनाया गया है कि अगर आप जो मीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं वो वित्तीय संसाधन भी हो सकते हैं जिसके प्रति आप अलगाववादी या सेपरेटिस्ट हरकतें या सशक्त विरोध को भड़काने वाली जो स्थिति है या फिर और गतिविधियों को बढ़ाना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनको प्रोत्साहित करना जिसमें भारत की संप्रभुता या एकता या अखंडता को खतरा आए तो उसमें पूरी तरह से जो कानून है उसको सख्त बनाते हुए पनिशेबल करा गया है।
ललित चौधरी जी, बहुमूल्य जानकारियां देने और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता के विरुद्ध अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता ललित चौधरी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।